आज के इस घोर कलयुग में चारों ओर देखा जाए तो असत्यता का राज्य चल रहा है। लोग यही कहते हैं कि झूठ बोलो और काम निकालो। आज की दुनिया में सच का स्थान है ही नहीं। ऐसे लगता है कि झूठ ही सर्वव्यापक है और झूठ में कितनी चमक है। आप सच्चा सोना देखिए और नकली सोने को देखिए, अधिक चमकदार वो नकली सोना दिखाई देगा। तो झूठ के बीच में जैसे सत्य छिप गया है, लोग झूठ को ही सच मानकर बैठे हैं और सत्य को तो शायद जानते भी नहीं हैं। ये जरूर है कि सत्यता की महानता का गायन अवश्य है। ईश्वर के लिए कहा जाता है ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। इसी प्रकार यह भी गायन है कि सच बोलो गत है, अर्थात सत्यता की सदा विजय है, जीत है। और जहां सत्यता है वहां पर अवश्य ईश्वर है। लेकिन सत्यता से लोग डरते क्यों हैं? हर एक व्यक्ति सोचता है कि अगर हम सत्यता के मार्ग पर चलेंगे तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। एक व्यापारी सोचता है कि अगर मैं सच्चाई से व्यापार करूंगा तो मेरी आजीविका नहीं हम कमा पाएंगे। आजकल तो है ही झूठ का व्यापार, व्यापार माना ही जिसमें झूठ हो। सच्चाई का व्यापार होता ही नहीं है, ये कुछ लोगों की मान्यता है। वकील सोचता है कि अगर मैं सत्यता के मार्ग पर चलूंगा तो मेरी वकालत कभी नहीं चलेगी, मुझे तो झूठ बोलना ही पड़ता है। एक विद्यार्थी सोचता है कि अगर मैं सच्चाई पर चलूंगा तो मैं कभी भी पास नहीं होऊंगा, मुझे तो नकल उतारनी पड़ती है। तो देखिए, हर एक व्यक्ति सत्यता से डरता है, सत्यता से दूर भागना चाहता है और वो सोचता है कि झूठ बोलो और काम निकालो। कई लोग सत्यता से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि ये कहावत प्रसिद्ध सुनी है उन्होंने कि सत्य कड़वा होता है। लेकिन थोड़ा सा गहराई से अगर हम सोचेंगे तो सत्यता कड़वी नहीं है। सत्यता तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे ईश्वर सत्य है तो उसकी शक्ति, सत्यता की शक्ति भी बड़ी श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति मानो मंगलकारी है, भय विनाशक है, सुखकारी है। शायद लोग सत्यता की परिभाषा को नहीं जानते, इसीलिए सत्यता से डरते हैं या दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर सत्यता की परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं कि सत्यता अर्थात जो चीज जैसी है वैसे ही उसे जानना, फिर उसे मानना, फिर उसे अन्य को बतलाना, और तदुपरांत उसे अपने व्यवहार में लाना, ये है सत्यता की परिभाषा। कई बार हम देखते हैं मनुष्य सत्यता को जानता जरूर है लेकिन मानने को तैयार नहीं होता। वो जानता है ये सच है, ये झूठ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन सत्यता जानने के बावजूद भी उसे वो मानने को तैयार नहीं। इसलिए क्या होता है, मन और बुद्धि दोनों के बीच में एक संघर्ष उत्पन्न होता है। बुद्धि सत्यता को स्वीकार करती है लेकिन मन क्योंकि अनेक आकर्षणों में फंसा हुआ है तो मन उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं होता, तो फलस्वरूप मन की शक्ति नष्ट हो जाती है। अब कई बार ऐसे भी होता है कि हम सत्यता को जानते हैं, उसे मानते भी हैं, लेकिन हम बताने में संकोच करते हैं। अंदर में डर लगता है कि अगर हम सत्यता की बात सुना देंगे तो कहीं हमारा ही नुकसान न हो जाए, कहीं हमें ही न हानि उठानी पड़े, इसीलिए हम उसे बताना नहीं चाहते। तो अगर बतलाते नहीं तो कह सकते हैं कि उस सत्यता का हमें मूल्य नहीं। अगर कोई चीज सत्य है तो उसको सत्य स्वरूप में बताने में हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर संकोच करते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि उस सत्यता की चीज को हमें मूल्य नहीं देना आता है। और कई बार बताते तो हैं लेकिन व्यवहार में उसे नहीं लाते हैं। तो ये ऐसे हुआ जैसे कानून को जानते हैं लेकिन कानून पर चलते नहीं, अर्थात सत्यता का विरोध हुआ। और जहां कानून का उल्लंघन हुआ तो आप सोच सकते हैं सजा के भागी अवश्य बनेंगे। लेकिन कई बार हमारे मन में सोच चलता है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, क्या जरूरी है झूठ बोलने की, क्या आवश्यकता है कि झूठ बोलना ही चाहिए। तो कुछ कारण है जो हमें सच के बजाय झूठ बोलने का एक अभ्यास बन जाता है। मान लीजिए आज एक बच्चा है, वह घर में खेल रहा है और उसने फूलों का गुलदस्ता गिरा दिया और फलस्वरूप वह वास टूट गया। अब माँ ने गुस्से में पूछा बच्चे से, बेटा ये किसने गिराया? बच्चे को डर लगता है, अगर मैं सच बताऊंगा तो मम्मी मुझे मारेगी। तो भूल करने के बाद सजा का भय उसे झूठ बुलवाता है। ये एक कारण बन जाता है झूठ बोलने का। जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, क्यों झूठ बोलता है? तो झूठ बोलने वाले पर क्रोध किया जाता है, ऐसे मान्यता है, और सोचते हैं कि अगर क्रोध करेंगे तो वो सच बतलाएगा। लेकिन अनुभव कहता है कि क्रोध करने से वो और ही झूठ बोलेगा। तो शायद हम क्रोध करके उनसे जानबूझकर झूठ बुलवाते हैं, अगर हम उनसे प्रेम से व्यवहार करें तो वह सच अवश्य बताएगा। क्योंकि ये भी हम मानते हैं कि जिससे मित्रता होती है, जिस पर विश्वास होता है, जिससे स्नेह होता है, उसको तो सच्चाई बताई जाती है। लेकिन जिससे डर होता है, जिससे दुश्मनी होती है, जिसके प्रति अंतर में विश्वास नहीं होता, तो उसे सच बताने में संकोच होता है। इसलिए भूल करके सजा का भय हमसे झूठ बुलवाता है। कई बार हम अपने आप को स्वार्थवश देखते हैं, हम चाहते हैं कि किसी की चीज हमें मिल जाए, मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, और हम उसे धोखा देना चाहते हैं, धोखा देकर किसी की चीज जब्त करना चाहते हैं, तो झूठ बोलकर हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। कई बार किसी की हानि करने के लिए हम झूठ बोलते हैं। और कई तो ऐसे विद्यार्थी हमने देखे हैं जो आलस्य के कारण झूठ बोलते हैं। टीचर पूछता है, आपने होमवर्क किया? तो बच्चा जवाब दे देगा, हाँ किया, और करता नहीं है, तो ये भी एक झूठ हो गया। तो ये सारे कारण झूठ के होते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि वह झूठ अकेला नहीं होता। एक झूठ के पीछे मनुष्य को कितने झूठ और बोलने पड़ते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि पहले झूठ के शब्द कुछ और होते हैं, और झूठ में झूठ, झूठ में झूठ मिलाते मिलाते अंतिम वाक्य कुछ और ही होता है, जो बिल्कुल पहले झूठ से विपरीत। तो इस प्रकार झूठा व्यक्ति पकड़ा भी जाता है। परंतु जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, उसे अपने वाक्यों को बदलने की आवश्यकता नहीं। झूठ का परिणाम हमेशा झूठ होगा। जिसने झूठ का साथ लिया होगा, उसके अंदर अनेक अवगुण भी आएंगे। झूठ के साथ भय, झूठ के साथ स्वार्थ की भावना, झूठ के साथ हेरा फेरी, मिलावट, ये सारी बातें झूठ के साथ ही हैं। और जो व्यक्ति सत्यता के मार्ग पर होता है, उस व्यक्ति को सच बोलने में कोई हिचक नहीं होती। वो सरल होता है, निर्भय होता है, निस्वार्थ भावना होती है, और इन सब बातों को अपनाने में उसे कोई कठिनाई भी नहीं होती, मेहनत भी नहीं लगती। सरलता से, एक स्वाभाविक रीति से इन गुणों को वो अपना लेता है, क्योंकि वो सत्यवादी है। तो हम सत्य की तुलना प्रकाश से के साथ कर सकते हैं, और असत्य की तुलना अंधकार से कर लेते हैं। जैसे सत्य चीज है, प्रकाश में है, तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, और अंधकार में कोई वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों न हो, परंतु हमें दिखाई नहीं देती, स्पष्ट नहीं अनुभव होती। तो जो व्यक्ति सत्यवादी होगा, उसकी हर बात स्पष्ट होगी, उसे कोई भी बात छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो झूठा होगा, वो हर बात छिपाता रहेगा, हर बार हर कदम पर झूठ के कारण वो डरता रहेगा। अब कई बार ऐसे भी होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना पड़े, उसके लिए सच बोलने में भी कुछ नुकसान का अनुभव होता है। मान लीजिए कि आज कोई पेशेंट है, उसे कैंसर का रोग हो गया, और डॉक्टर से वो पूछता है, डॉक्टर साहब मुझे कौन सा रोग है, मुझे क्या तकलीफ है। क्या डॉक्टर उसे उसी वक्त कह दे कि आपको कैंसर है? पूछने पर भी डॉक्टर नहीं कहेगा। उसे मालूम है कि ये आत्मा भी कमजोर है, इसका शरीर भी कमजोर है, और अगर मैंने इसको सच बता दिया तो हो सकता है कहीं अभी ही इसका हार्ट फेल न हो जाए, तो इसलिए कुछ देर तक वो रुकता है। अंतर में कल्याण की भावना होती है, तो लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उस झूठ में भी सत्यता छिपी रहती है, क्योंकि भीतर में कल्याण की भावना है। एक छोटा सा बच्चा आपसे कई प्रश्न पूछेगा, कई तरह के प्रश्न पूछेगा, क्या आप उनको सब बतला सकते हो? नहीं, उनकी बुद्धि सीमित होती है, इसीलिए उनकी बुद्धि अनुसार ही उनकी बात दी जाती है। चाहे लगता है कि हम इसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ नहीं होता, परंतु उस आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है, इसीलिए हमें शब्दों को फिराना पड़ता है। तो सत्य का उद्देश्य हमेशा कल्याणकारी होता है। कुछ समय के लिए सत्य को शायद स्थगित भी करना पड़े, लेकिन कल्याणकारी उद्देश्य होने के कारण उसमें कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि सत्य को हम दें, परंतु समय, स्थान, व्यक्ति देख करके प्रेम से दें। सत्य अवश्य कड़वा होता है, ये जरूरी नहीं है। आज कितनी कड़वी चीजें हैं, उनको हम पीते हैं, लेकिन मिठास डालकर हम पी सकते हैं, शुगर कोटेड बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें कड़वा ही पीना होगा। तो कई सत्य चीजें हैं जिनको हम दे सकते हैं औरों को, लेकिन समय देखना पड़ता है, स्थान देखना पड़ता है, व्यक्ति की स्थिति देखनी पड़ती है। मान लीजिए आज कोई पेशेंट कमजोर है और उसके ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन क्या डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करेगा? हो सकता है ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, और अगर ऑपरेशन तुरंत किया जाए तो वह व्यक्ति बचने के बजाय मर सकता है। तो डॉक्टर धीरज रखेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखेगा, उसकी डायबिटीज को कम करेगा और तब उसका ऑपरेशन करेगा। तो समय, स्थान, व्यक्ति, इनको तोल कर, इनको समझ कर, फिर हम सत्य बात अवश्य दे। तो सत्य तो मीठा है, सत्य कड़वा नहीं है, सत्य तो सुख देता है। तो परमात्मा सत्य है, इस बात को भी हम अनुभव करें। आध्यात्मिकता जो सत्यता है, उसको हम कभी भी नकारे नहीं, उसकी शक्ति को पहचानें। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, यह प्रकृति सत्य है, कर्मों की गति सत्य है। इन चारों चीजों को हम सत्य स्वरूप में स्वीकार करें। आत्मा सत्य अर्थात आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, यह है सत्यता का स्वरूप। परमात्मा सत्य है क्योंकि परमात्मा अपरिवर्तनशील है, अविभाज्य है, अदृश्य तो है ही, लेकिन साथ साथ हम परमात्मा के दिव्य दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के ज्योति स्वरूप आकार का हम अनुभव कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। ये परमात्मा की सत्यता है और उनके सानिध्य में विराजमान होकर के हम परमात्मा से सर्व गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। और साथ साथ प्रकृति भी सत्य है, प्रकृति को हम असत्य नहीं मानते। जो चीज है उसे हम सत्य अवश्य कहेंगे, लेकिन प्रकृति को इसलिए असत्य माना गया है क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। और आध्यात्मिक भाषा में जो चीज परिवर्तनशील है वह असत्य मानी गई है, परंतु फिर भी प्रकृति विज्ञान के दृष्टिकोण से तो सत्य है ही। आज विज्ञान के कितने चमत्कार हम देख रहे हैं। वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के आधार से वह चमत्कार करते हैं, प्रयोग करते हैं, और हमारे सामने अनेक सुख के साधन उपलब्ध करा चुके हैं। तो हम प्रकृति को असत्य कैसे मान सकते हैं? परंतु प्रकृति में परिवर्तन होने के कारण इसे हम असत्य मान रहे हैं। कारण कि आज कोई चीज हमें सुख दे रही है, कल वही चीज हमें दुख देती है। आज विज्ञान की शक्ति से हम आविष्कार करके सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज विज्ञान की शक्ति ही अभिशाप का भी रूप बन रही है, जो अनेक हथियार आज संसार में बन चुके हैं, जो विनाशकारी हथियार है, इस संसार को खत्म करने लिए तुले हुए हैं लोग। तो देखिए, ये है विज्ञान की आज की शक्ति, परंतु प्रकृति की शक्ति अविनाशी शक्ति है। प्रकृति की शक्ति सत्य शक्ति है, क्योंकि प्रकृति अपने असली स्वरूप में तो सुख स्वरूप है। पांचों ही तत्व अपने असली स्वरूप में सुख स्वरूप है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत वास्तव में सुखकारी है। इसीलिए इन तत्वों को भी देवता के रूप में माना गया है। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, धरती को भी देवता के रूप में मानकर उसकी पूजा होती है। तो ये जितने भी तत्व हैं उनको देवता इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने आप काम करते हैं। कहा जाता जो इशारे से चले, जो इशारे को समझे या जो अपने आप करे वो देवता, जो कहने से करे वो इंसान, और जो जबरदस्ती के आधार पर करे वो हैवान। तो इसीलिए ये प्रकृति भी देवता का स्वरूप हमारे सामने है, लेकिन आज प्रकृति विकृत रूप ले चुकी है क्योंकि मनुष्य के कर्म विकृत रूप ले चुके हैं। तो प्रकृति द्वारा उसका फल हम दुख के रूप में भोग रहे हैं। अकाल, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, ये जो भी प्राकृतिक प्रकोप हम दुनिया में देख रहे हैं, ये सारे प्रकोप हमारे ही असत्यता की शक्ति के कारण हम अनुभव कर रहे हैं। तो वास्तव में आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है और कर्मों की गति भी सत्य है। हम कोई भी कर्म करके ये सोचें कि हम इनसे छूट जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। जो मैंने कर्म किया है वो साया के समान, छाया के समान हमारा पीछा करता रहेगा। तो क्यों नहीं इन चारों बातों को समझकर हम सत्यता की शक्ति को अपनाएं और ये बुद्धि से निकाल दें कि झूठ ही बोलना है और झूठ से काम निकालना है। हालांकि झूठ में चमक अधिक हमें दिखाई देगी, लेकिन उस चमक के पीछे हमें दौड़ना नहीं है। ये चमक ऐसी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैनॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक बहुत सुंदर कवर हमने किताब पर चढ़ा दिया और हम कह दें ये कितना अच्छा किताब है, लेकिन केवल कवर चढ़ाने से वो किताब अच्छा नहीं बनता। अंदर में क्या सामग्री है, क्या शब्द है, क्या वाक्य है, उसके आधार पर उस किताब का मूल्य होता है। व्यक्ति केवल बाहर से आकर्षित हो तो वह मूल्यवान बन जाता है, ऐसी बात नहीं, जब तक उसके कर्म महान न हो। सो अ मैन इज नोन बाय हिज एक्शंस। मनुष्य अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। तो अगर हम सत्यता की शक्ति को समझेंगे तो कभी भी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे और सत्यता की शक्ति वाले अवश्य महान बनते हैं, परमात्मा के समान बनते हैं। उनको किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों हम किससे डरें? अगर कोई इंसान भूल करता है तो उसके मन में भय पैदा होता है। अगर मैं भूल नहीं करूं तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में भय भी आत्मा को कमजोर बना देता है। हम कई बार अनेक विचार भय के कारण उत्पन्न करते हैं और आत्मा को कमजोर बनाते जाते हैं। तो सत्यवादी बनो, अपने भीतर में एक दृढ़ संकल्प करो कि मुझे सत्यता के मार्ग पर चलना है, मुझे ईश्वर से अपना संबंध जोड़ना है और हर हालत में उनसे शक्ति लेकर के मुझे सर्वशक्तिवान परमात्मा की तरह मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। और जब मैं स्वयं शक्ति स्वरूप बनूंगी तो मैं अनेक आत्माओं को शक्ति प्रदान कर सकूंगी। ये सत्यता की शक्ति ऐसी शक्ति है जो आप धारण करो और अनेकों को धारण कराओ तो ये संसार सत्यवादी अवश्य होगा। और सत्यवादी बनते बनते कलयुग बदल कर सतयुग आ सकता है, ये हम सबका दावा है। तो इसी निश्चय के साथ हम फिर से आप सबसे निवेदन करेंगे कि सत्यता की शक्ति को पहचान कर उसे अपने जीवन में अपनाओ और सत्यता को आगे बढ़ाकर इस संसार को सतयुग बनाने का लक्ष्य रखो। ओम।